జయ గురుదేవం జయ గురుదేవ ఓం అశరణ శరణ శరణ ప్రభులే कहीं जो कोप विधाता गुरु रूठे नहीं को जग त्राता गुरु के वचन प्रतीतन जाई शुभ मन सुख सिद्धिताई ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
कबीर का एक भजन है, रस गगन गुफा में अजर झरे बिन बाजा झनकारे उठे जहां समुझी परत जब ध्यान धरे रस गगन गुफा में अजर झरे बिना ताल जहां कमल फुलाने तहां चढ़ी हंसा केली करे बिनु चंदा उजियारी दर्शे जहां तहां हंसा नजर पड़े रस गगन गुफा में अजर झरे दशवें द्वारे ताली लागी अलख पुरुष जाको ध्यान धरे जुगन जुगन की त्रखा बुतानी कर्म भरम यघ व्याधि टरे रस गगन गुफा में अजर झरे काल कराल निकट नहीं आवे काम क्रोध मद लोभ जरे कहत कबीर सुनो भाई साधु अमर हो या कब हूं न मरे रस गगन गुफा में अजर झरे। कबीर एक सगुण उपासक, साहिब का घर दूर लंबी पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे राम रस गिरे तो चकनाचूर। परमात्मा का घर कहीं दूर है, अपने कहीं अलग खड़ा है, चढ़े तो चाखे राम रस, जहां भगवान की दूरी है वहां तक चढ़ जाए तो राम रस प्राप्त करे, और कहीं रस्ते में फिसल गया तो चकनाचूर। भगवान अलग हैं, अपने अलग हैं, चढ़ना और गिरना लगाई हुआ है। और सगुण उपासक के क्या लक्षण होते हैं? यही तो कि प्रभु अलग हो, हम अलग हों और खोज बाकी हो। निर्गुण कोई उपासना नहीं है, निर्गुण तो प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी है, एक स्थिति है जहां प्रकृति के तीनों गुण शांत हो जाते हैं। इसीलिए कबीर सगुण उपासक थे और उनके आराध्य राम चिंतन का नाम राम। कुशल कहत कहत जग बिन से कुशल काल की फांसी कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे यमपुर जासी। लोग कहते हैं कुशल है, बोले हाँ प्रमोशन हुआ, बिक्री अच्छी, अच्छे रिश्तेदार मिल गए, शादी अच्छी हो गई, ये विजय हो गई, पनत पैदा हुआ, ये कुशल वो कुशल। कबीर कहता ये कुशल काल का फेंका हुआ फंदा तो नहीं है, ये कुशल काल की फांसी। हम इसी आव भाव में एक निपटाया, दो निपटाया, नात निपटाया, पनत निपटाया, इतने में आयु के दिन पूरे हो गए। दुर्लभ मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन हम भ्रम ही भ्रम में, धोखे ही धोखे में हमारी समय बीत गया। तो ये कुशल काल की फांसी, और तो भला कुशल है कहाँ, कहे कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यम पुरजासी। एकमात्र राम, एक उन परम प्रभु का भजन नहीं करोगे तो बरबस बांध कर यम लोग पहुंचा दिए जाओगे। अर्थात उनके आराध्य हैं राम, और चिंतन का नाम राम। जे जन भीजे राम रस विकसित कबहु न रूख, अनुभव भावन दर्शिए तेहि नर सुख न दुख। जो कोई भी जन सेवक राम के रस में सराबोर हो गया, वो सदा विकसित रहते हैं, कभी उदास नहीं होते, उनके जीवन में उदासी है ही नहीं। विकसित कबहु न रूख, लेकिन लाख हम नाम जपे और उधर से भगवान स्वीकृति न दे तो बेकार दो कौड़ी का। अनुभव भाव न दर्शिए तेहि नर सुख न दुख। हमारे नाम जप करें और हमारे भाव के प्रवाह के साथ साथ भगवान अपनी जानकारी न दे, भगवान उसको स्वीकृति न दे, तो उसके लिए न सुख है न दुख है। तोता रटन थे नाम राम, भव कहते हैं संसार को, अन कहते हैं अतीत को। संसार से अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम अनुभव है। वास्तव में जिस सत्य पर हम बैठे हैं, जिस परमात्मा की हमें चाह है, हमारी पुकार ऐसी हो कि वो हमारी आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाए और हमारा मार्गदर्शन करने लगे, उनके वाणी का श्रवण और उसका मनन और पालन अनुभव कहलाता है। भगवान बातें भी करते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर। मन इतना निर्मल विशुद्ध हो जाए जैसे गंगा नीर की मान्यता है, तो भगवान पीछे लग के घूमने लगते हैं, बच्ची इधर पांव रख, उधर मत रख, देख सीढ़ी है। छोटे बच्चे को नहीं उंगली पकड़ के चला ले जाते। पाछे लागे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, हरी कहीं अलग है, अपने कहीं अलग है, कैसा निर्गुण उपासक। यही तो शुद्ध सगुण उपासक की परिभाषा है कि जिस प्रभु की हमें चाह है वो हमारी सार संभाल करें, आगे पीछे खड़ा हो जाए। पाछे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर, जिस दिन से भगवान रथी हो जाते हैं उसी दिन से शुद्ध योग साधना की शुरुआत होती है। क्योंकि हम प्रभु के ही संरक्षण में चल रहे हैं, इसलिए सगुण उपासना की जागृति होती है। कबीर एक सगुण उपासक, यही सगुण उपासक चल के जब मूल का स्पर्श कर लेता है तो सगुण उपासक ही निर्गुण हो जाता है, निर्गुण की रहनी प्राप्ति वाला हो जाता है। कबीर को स्थिति मिल गई एक दिन, तो अब धुवे गम देश है मेरा, तहाने उपजे मरे न बिन से नहीं न काल का फेरा। अब जो मेरा निवास स्थान है वो वेगम है, अचिंत्य है, अगोचर है, मनुष्य की बुद्धि विवेक से परे अतीत है। वहां काल का आना जाना नहीं है, कालन खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। तहां न सूर्य चंद्र नहीं रजनी नहीं तहां अंधे उजेरा। ये सूर्य ये चंद्रमा का प्रकाश वहां नहीं पहुंचता, न अंधकार है न उजेला ही है। तहां न ईश्वर जीवन माया पूजक पूजन चेरा। वहां ईश्वर नहीं है, जीव नहीं है, पूजने योग्य कोई सत्ता नहीं, पूजने वाला कोई पथिक नहीं, तो भला कौन भजन करेगा और किसका करेगा। निर्गुण तो एक ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्थल है जहां पूजने योग्य कोई सत्ता शेष नहीं, पूजने वाला पथिक कोई नहीं, तब उपासना कौन करे। अंत में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो नहीं ता द्वैत बखेड़ा। वहां द्वैत का बखेड़ा नहीं है, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, किंतु मुझसे भिन्न अलग से परमात्मा का भी कोई संचार नहीं दिखाई देता। जानत देखते देखते क्या से क्या हो गया, अगर खुद ही गुम हुई तो खुदा हो गया। नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता है और एक नुक्ता के एर फेर से जुदा खुदा हो जाता है। बस तो ये हर जीव एक नुक्ता है, एक बिंदु है, एक अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और ये साधना के सही दौर में पड़ के जब मूल का स्पर्श किया तो नुक्ता खत्म, बिंदु खत्म, सिंधु शेष। और भगवान जो करुणा अपनाते हैं तो अपनी भगवत्ता उसी को सौंप देते हैं, अपने न्यूट्रल हो जाते हैं। कोई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो निर्गुण एक स्थिति है न कि उपासना। यही सगुण उपासक जब पाएगा प्राप्ति के पश्चात जो गुणातीत स्थिति है उसका नाम है निर्गुण। वो तो सर्टिफिकेट है, उसमें कोई श्रम ही नहीं है, सेलेक्ट हो गए बात खत्म हुई। कबीर के चिंतन का नाम राम था और स्वयं जपते थे और सबको जपने के लिए बाध्य करते थे कि रामन रमसी कवन दंड लागा मर जय बेका करि दे अभागा। राम का भजन क्यों नहीं करते, कौन दंड लागा उसमें कौन सा कर देना पड़ता है, रे अभागे मर जाओगे तब क्या होगा। लेकिन भजन आवश्यक, लोग भजन करते हैं तो कहते हैं आनंद नहीं आता है, कुछ मिलता नहीं, मन नहीं लगता है। भगवान के रास्ते में अनंत सुख है लेकिन यहां तो दुखी दुख है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो कबीर कहता है मिलेगा लेकिन साधना की एक सीढ़ी एक निश्चित दूरी तय कर देने के पश्चात शुरू होता है ब्रह्म पीयूष का संचार। तो रस गगन गुफा में अजर झरे, एक तो है विषय रूपी बारी, संसार समुद्र विषय रूपी बारी, लेकिन भगवान भी सिंधु है, वो शीर सिंधु है। तो ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल रस जो पेशो रस पावे, तो कत झूठ बिलोकी विषय रस मन कुरंग जो धावे। ब्रह्म पीयूष वो मधुर और शीतल, कदाचित वो रस प्राप्त हो जाती है मन रूपी मृगा, भला विषय रूपी बारी मृग तृष्णा के पीछे क्यों दौड़े। तो ब्रह्म पीयूष वो रस गगन गुफा में अजर जरे। आकाश कहते हैं शून्य को, आकाश कहते हैं पोल को। अभी आपके मन के अंदर भीड़ लगी हुई है, पूरा बनारस में जितने लाख की भीड़ है उससे भी तगड़ी, संकल्पों की लहर तांता लगा। ये शांत होके चित जिस क्षण संकल्प विकल्प से रहित शून्य में टिकने की जिस क्षण क्षमता पाया, उस दिन वो आकाश के कोने में कंदरा में प्रवेश पा गया। आकाशवत तो नहीं हुआ लेकिन आकाश के कोने में कंदरा में प्रवेश पा गया, वो गगन गुफा में प्रवेश पा गया। न भीतर से संकल्प का अभ्युदय शांत हो जाए और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प ही ग्रहण करे मन। जहां चिंतन करते करते ये अवस्था आई तो आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को। चित संकल्प विकल्प से रहित जहां शून्य में स्थिर हुआ, तत्सन ब्रह्म पीयूष जो मधुर शीतल रस है उसका संचार मिल जाता है, उसका स्रोत मिल जाता है। तो रस गगन गुफा में अजर जरे, एक बार जागृत हो गया तो अजस्र प्रवाहित रहता है, फिर वो क्रम कभी नहीं टूटता है। ये संसारी झरनों की तरह कुछ दिन चला बरसात में, गर्मियों में ठनाठन, ऐसा नहीं, फिर अजस्र अनवरत अविरल प्रवाहित होता है, फिर कभी क्रम टूटता ही नहीं। आप सो जाओ लेकिन वो झरना चलता रहेगा। तो बिन बाजा झनकार उठे जहां, दूसरी वहां व्यवस्था एक और मिली। कहो कि उदास हो जाओ ऐसी बात नहीं, वहां बाध्य भी है लेकिन बाजा नहीं है, और एक झनकार अनंकार उठा करती है। किंतु समझ परे जब ध्यान दे, समझ में तभी आएगी वो झंकार जब ध्यान धरे हमारा चित्त, जब हम ध्यान धरे। बस ध्यान धरते धरते चित्त जब शून्य में टिकने की क्षमता पा जाता है, इसके साथ ही रिनक दिनक दुनिया अपने से उठे। एक बार सूरत लगा लो तो ओम 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 एक धुन प्रवाहित हो जाती है, ये झनकार उठती रहती है। लेकिन जब हम ध्यान करें भली प्रकार, नियमित नहीं अविरल ध्यान में दृष्टि रखें, तब संभव। अगली लाइन में कहते हैं अर्थात भजन अनिवार्य, बैठे बैठे तो कहा नहीं है। बिना ताल जहां कमल फुलाने, मल कहते हैं दूषित को, गंदगी, कमल पानी में रहता है, कीचड़ में जामता है, पंख में पानी में रहता है, बार बार पानी में लहरें ऊपर से आती जाती हैं लेकिन एक बूंद पानी बेद नहीं पाता कमल पत्र को भी और पखड़ी को भी। कीचड़ में रहते हुए भी निर्लेप, संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहने की जहां क्षमता आ गई, उसको महापुरुषों ने कमल की संज्ञा दी है कि पद्म पत्रम मिवाम्बसा। कमल का पत्र जैसे पानी में रहते हुए भी उसे निर्लेप रहता है, शुष्क और सूखा रहता है, जबकि पानी ऊपर से जाता बेदता नहीं, कपड़े की तरह भीगता नहीं। कमलों का चित्रण है, 5, 6, 7 चतुष्ट दल कमल, मन बुद्धि चित्त अहंकार अधोमुखी है, विषयोन्मुखी प्रवाहित है, उधर से सिमट के ऊर्ध्वमुखी हो जाए इष्टोन्मुखी प्रवाहित। चतुष्ट दल कमल खिल गया, तू नीचे की ओर मल था, ऊपर इष्ट की ओर निर्मल। अब संसार में तो है लेकिन संसार से अलिप्त रहने की क्षमता आ गई, क्योंकि वो स्मरण करता है केवल ऊर्ध्वमुखी इष्ट का। यहीं से भजन आरंभ होता है, इसलिए इसको मूल बंध कहते हैं। आगे खड़ विकार खड़े ऐश्वर्यम परिवर्तित हो गए, शॉर्ट में कहते हैं अष्टदामूल प्रकृति अष्ट सिद्धि हो गई, नवो इंद्रिया नव निधि हो गई, स्वामी और सेवक आमने सामने हो गए, बीच में माया का जो आवरण था वो हट गया, वो प्रभाव नहीं डाल पाती माया, खल नर्तकी बिचारी, नाचने वाली नटनी मात्र, कर न सके तहा निज प्रभुता ही। वो जब प्रभुता न कर सके, स्वामी भगवान और भक्त आमने सामने, दो दल कमल और चित्त की अनंत प्रवृत्तियां हैं, सहस्रों प्रवृत्तियों से ऊर्ध्वमुखी हो गया तो सहस्र दल कमल। उस वक्त भगवान जो भरण, भगवान की वह प्रशक्ति जो संसार का भरण पोषण करती है, विष्णु भरण पोषण करने वाली प्रशक्ति विदित हो जाती है। जब चित्त की सहस्रों प्रवृत्तियां जो अधोमुखी, संपूर्ण प्रवृत्तियां ऊर्ध्वमुखी हुई तो सहस्र दल कमल खिल गया। ये एक योगिक शब्दकोश है, वहां तालाब भी नहीं है और खिल भी गए। तो बिना ताल जहां कमल खिलाने, मन बुद्धि चेत अहंकार इंद्रियां सब, पूरी वृत्ति ही ऊर्ध्वमुखी हो गई, संसार में रहते हुए भी निर्लेप हो गई। तहां चढ़ी हंसा केली करे रस गगन गुफा में अजर जरे। और इस ऊंचाई पे आप पहुंचकर संत हंस गुण गहें पे परिहरी बारी विकार, वे संत हंस हैं कहलाते हैं। विषय रूपी बारी विकार को त्याग के ईश्वरीय गुण रूपी दूध जिनका जीवन हो गया हो, शेर को मांस वो घास खिला के जिलाओ, मछली को पानी के बाहर जिलाओ, क्या जिएगी? मृत्यु। ऐसे ही हंस उसे कहते हैं जिसका ईश्वरीय गुण रूपी दूध ही जिसका जीवन हो गया हो, बाहर हुआ तो मृत्यु, जी नहीं सकता, जीवन धारण नहीं कर सकता, तो वे संत हंस कहलाते हैं। और जब सारे कमल इष्टोन्मुखी प्रवाहित हो गई वृत्तियां, तहां चढ़ी हंसा केली करे, इस ऊंचाई पर जहां साधना पहुंची तो फिर आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, उमा राम प्रभाव जिन जाना, तिन्ही भजन तजी भावने आना, वो भजन के सिवा उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं, और उसी में मस्ती में रहता, भले फटे चिथड़े हों चाहे तीन उपवास हुए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिनु चंदायु जी आरी तरसे, जहां तहां हंसा नजर पड़े, इसके साथ ही चंद्रमा तो नहीं है, जगत रूपी रात्रि, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी, इस जगत रूपी रात्रि में सब प्राणी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, क्लोरोफार्म सुंगा की चीरफार घर में लेटाए रहते हैं ना, ऐसे ही पड़े हुए हैं, संयमी पुरुष जाग जाता है। रामायण में बड़ा सरल दिया कि मोह निशा सब शोभनिहारा, मोह रूपी रात्रि में सब निश्चेष्ट पड़े हुए, और रात दिन जो दौड़ धूप कर रहे हैं, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, वो रात दिन स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि संसार को ही तो समेट के इकट्ठा किया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उस सपने को ही घूम फिर के देख रहे हैं, जगत संसार एक रात्रि, और चंद्रमा तो नहीं है, लेकिन इस जगत रूपी रात्रि में सर्वत्र ईश्वर का क्षीण प्रकाश छा गया, तो बिनु चंदा, चंदा नहीं, जब निर्लेप रहने की क्षमता आ गई, वहां चल के हंस की लोलें करने लगा, मस्ती आ गई, और उसके साथ ही संसार तो है, रात्रि भी अभी है जब तक भगवान न मिल जाए। इस जगत रूपी रात्रि में घना अंधकार छट गया और एक उजेला दर्शाने लगा, लेकिन चंद्रमा नहीं लेकिन उजेला है, अर्थात ईश्वर का क्षीण प्रकाश। तो बिनु चंदा उजियारी दर्श, और उस उजेले में देखता क्या है कि जहां तहां सा नजर पड़े, रस गगन गुफा में अजर जरे, उस उजेले में जहां तहां हंसा नजर पड़े, तो मैं मोह में खड़क खंभ में सब जगह आराध्य देव का स्वरूप प्रसारित दिखाई पड़ने लगा, स्वर्ग नरके अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनु बाना, सर्वत्र जहां भी दृष्टि पड़ी, न तो स्वर्ग स्वर्ग के रूप में है, न नरक नरक के रूप में है, न वैकुंठ वैकुंठ के ही रूप में है जिसकी हम कामना करें, जहां भी दृष्टि पड़ी अपने आराध्य देव के स्वरूप को प्रसारित पाया, हर आत्मा को ईश्वर पथ का पथिक पाया उन्होंने, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों गवि हस्तिनी सुनिचे उसे पाके चाह पंडिता समदर्शिना, वो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में जो एक सियार लटकाए हुए जाल पास में है, कुत्ता तथा गाय में, विशाल काया हाथी में, पंडिता समदर्शिना, जो पंडित है उस पथ के पूर्ण ज्ञाता है, जिसे अनुभूति का संचार प्राप्त है, उस समान ही दृष्टि वाले होते हैं, न विद्या विनय युक्त ब्राह्मण कोई विशेषता रखता है, न चंडाल कोई हीनता रखता है, न कुत्ता अधर्म है और न गाय धर्म है, क्यों कि उनकी जहां दृष्टि पड़ती तो अपने आराध्य देव को ही खड़ा पाते हैं, फर्क इतना ही है कोई साधक
विद्या विनय युक्त अगली श्रेणी पर है, उन्नत है, और वो साधक थोड़ा नीचे है, लेकिन है साधक, है ईश्वर के पथ का पथिक, परमात्मा का ही संचार। इसलिए जहां तहां हंसा नजर पड़े, रस गगन गुफा में अजर जरे। अंत में दसवें द्वारे ताली लागी। ताली जानते हो कुंजी को कहते हैं, कि नौ द्वारे पूरे देही, ये नौ दरवाजों वाला शरीर है, नौ इंद्रिय। और हमने मन से इंद्रियों को संयमित कर लिया, ध्यान धरा, वाद्य सुनाई पड़ा, संसार में रहते हुए निर्लेप रहने की क्षमता, इस जगत रूपी रात्रि में क्षीण सूर्य प्रकाश का संचार मिला, जिसमें जिस पर भी निगाह पड़ी तो अपने आप परमात्मा प्रभु के स्वरूप को प्रसारित पाया, जाता अंसा नजर पड़े। ये इंद्रियों का जब इतना संयम बन गया, इसके साथ ही इसके पश्चात दसवें द्वारे ताली लागी। दसवां द्वार है ब्रह्मरंध्र, जिस द्वार से ब्रह्म में प्रवेश पाया जाता है, योग युक्ति की कुंजी, सदगुरु दिनी ताला कुंजी, जब चाहो तब खोलो किमड़िया। योग युक्ति एक कुंजी है, जब वो दसवां द्वार है ब्रह्मरंध्र, जिस दरवाजे से ब्रह्म में प्रवेश पाया जाता है, योग युक्ति की कुंजी, जब युक्ति वहां लग गई, तो अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। अलख परमात्मा का एक संबोधन है, कि अचिंत्य है, अगोचर है। मन के अंदर या तो मनुष्य के पास या तो इंद्रिय हैं, या मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन है, चित्त है। कहते हैं विचारों से अतीत, तर्क से अतीत, चित्त और मन से अतीत, बुद्धि से अतीत, इंद्रियों से अतीत, इसलिए उनको अलख कहा गया। तो वो अलख जो लिखने में नहीं आता, वो अनुभव गम्य है, वो परम प्रभु परमात्मा। जहां दसवें द्वारे ब्रह्मरंध्र में जहां योग युक्ति का संचार हुआ, ताली लग गई, तो अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। जो अलख है, अचिंत्य, अगोचर है, वो अविनाशी परम पुरुष परमात्मा, जो शाश्वत सनातन परम धाम है, वो प्रभु ध्यान धरे। अब तक ध्यान हम धरते थे, अब भगवान ध्यान धरे। इस अवस्था के बाद भगवान ही उल्टा ध्यान धरने लगते हैं। भजन हमार हरि करे हम पायो विश्राम, वो हो गए पेंशनियर। और जुगन जुगन की त्रखाबुतानी, जन्म जन्मांतरों से आत्मा प्यासी थी। चक्रवर्ती नरेश ये बना, कंगाल ये बना, उद्योगपति ये बना, लेकिन रहा बेचारा दरिद्र का दरिद्र। इन इसकी प्यास कभी मिटी नहीं, किंतु दसवें द्वारे में जब ताली लगी, अलख जो अविनाशी परमात्मा, जब वो उसने हमें उठा लिया, अब वो हमारा ध्यान धरने लगा, ता जन्म जन्मांतरों से जो आत्मा त्रिषित थी, उसकी प्यास मिट गई, आत्मा अपना स्वरूप पा गया, अपना धाम धरातल पा गई। तो जन्म जुगन की प्यास बुतानी, और कर्म भरम यज्ञ व्याधि टरे, कर्मों के लेख खत्म। जो चिंतन कर्म अनिवार्य था, उसकी भी आवश्यकता पूर्ण हुई, और जो भ्रम था कि क्या है, कैसे है भगवान, वो भ्रांति समाप्त। पाप जो हमारी पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति, वो शांत, और भव बाधा खत्म हो गई। परश गगन गुफा में अजर जरे, अर्थात भजन अनिवार्य है। अंत में कहते हैं, काल कराल निकट नहीं आवे। काल कहते हैं समय को, ये समय की करछुली ऐसी घुमा फिरा के बाल पका देता है, दांत गिरा देता है, और आयु का अंतिम क्षण तक पहुंचा देता है। ये काल, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, तो ये काल, कराल काल, जिससे कुछ
बच्चा ही नहीं। काल सदा दुर्तिक्रम भारी बड़ा प्रबल है, वो भी नजदीक नहीं आता, क्योंकि ध्यान तो भगवान धर रहे हैं अब, तो भगवान के चकमा देके तो आपको ले जाएगा नहीं। तो काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मध लोभ जरे, ये खड़ विकार काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये प्रकृति सदा के लिए शांत हो गई। और जहां विकार शांत हुए तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कहता संतों जरा ध्यान दो, अमर हो या कब हूं न मरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। वो अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है जहां मृत्यु का समावेश नहीं है। कृष्ण कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्रापशी शाश्वतम। अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में वास करता है, उसकी शरण जाओ। सर्वभावेन भारत, संपूर्ण भावों से शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ दी, कि मान्यताएं लोगों में बहुत है, कोई गायत्री गायत्री हल्ला किया, कोई बिंदवासिनी किया, कोई पशुपतिनाथ, कोई अल्लाह, कोई खुदा, सारी मान्यताएं तोड़ी और हम लग गए, तब लाभ क्या? कहते हैं तत्प्रसादात परम शांति, इसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लो। इतना ही नहीं, स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, तुम उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम्हारा धाम स्थान माने होता निवास स्थान, तुम्हारा निवास स्थान घर रहेगा और तुम्हारा जीवन रहेगा। तो अमर हो ये कब हूं न मरे, रस गगन गुफा में अजर जरे। आज भजन में मन नहीं लगता, भजन में रस नहीं मिलता, मिलेगा एक निश्चित दूरी तय करने के पश्चात। कम से कम यहां तक तो दूरी आपको तय करना ही होगा। चित संकल्प विकल्प से रहित शून्य में टिकने की, दस दो एकाध मिनट टिकने की क्षमता पाई तो आकाशवत तो नहीं हुआ, लेकिन आकाश में प्रवेश मिल गया उसका, उसकी कंदरा में प्रवेश मिला, तुरंत वो जिसको ब्रह्म पीयूष कहते हैं वो रस प्रसारित हो जाएगा। अजस्र एक बार जागृत हुआ तो फिर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं, आरंभ का नाश नहीं, माया में कोई यंत्र नहीं कि उसको मिटा दे। इसलिए स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो बयात, धर्म है ईश्वर दर्शन की जो नियत विधि है, नियत क्रम जिसे कहते हैं, उसका परिपालन उसका आचरण ही धर्म है और कोई धर्म नहीं। तो इस धर्म का स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है इसमें, निष्काम कर्म योग में, कि स्वर्ग वैकुंठ रिद्धियां सिद्धियां में भरमा के तुम्हें खड़ा कर दे। इसलिए स्वल्प साधन भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करता है। अगले जन्म में जहां साधन छूटता वहीं से आरंभ करता है, और कुछ एक जन्मों के अंतराल से वहीं खड़ा कर देता है, जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। ईश्वर पथ में ये सुविधा है कि श्वास के रहते रहते दो कदम चलते बन गया समझ कर तो मुक्ति तो नहीं हुई, मोक्ष का आरक्षण भली प्रकार हो गया, ये आपका जीवन बीमा है। फिर अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति। लेकिन कुसंग हम पर असर कर सकता है, तो हमारा सुसंग उस पर भी तो असर करना चाहिए। कुछ ऐसे भी स्तर के लोग होते हैं, करोड़ कुसंग आवे चंदन बिख व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, कोई प्रभाव नहीं। एक बड़े अच्छे महापुरुष थे जैन फकीर, जिनको हम भारतवर्ष में परमहंस कहते हैं, जापान में उसको झेन फकीर कहते हैं। बड़े अच्छे महात्मा, रात को 12 बजे टहल रहे थे, टहल के भजन ही कर रहे थे, चोरों ने लगाया सेंध, बढ़िया कोनो गुस्सा साहब पागे हूँ, 5 किलो सोना, लगभग 1 क्विंटल तक चांदी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन धन से कभी तृप्ति आज तक किसी की हुई नहीं। बोले यार अभी तो 12 ही बजा है, आज साइट अच्छी है, जिंदगी बीत गई इस चोरी करते करते, 25 बार पुलिस पिटाई किया, 10 बार जनता घेर के पिटाई किया, पेट कभी भरा नहीं, आज साइट अच्छी है, देखो ना इतना माल पानी। करीब 1.25 मन चांदी, 5 किलो सोना और उटांग पटांग तमाम समेटे रहा। चलो एक हाथ और मारा जाए, अभी तो 12 ही बजा है, असली समय हम लोगों का 12 से 2 तक है। यार लोड ज्यादा कोई साथी मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहा, तो ये चिंता वो सोच ही रहे थे तो दिखाई पड़ गए महाराज। तो चोरों ने सोचा अर्धरात्रि को तो हमारी ही बिरादरी बिचरा करती है, लगता ये भी है चोर। बस बोले क्या बोचट की तरह घूमता है, ले गठड़ी तुमको भी सैर मिलेगा, और जबरदस्ती गठड़ी महाराज के सिर पर ढकेल दी। और एक भला सा घर देखा लगाया, सेंध घुसे अंदर, महाराजो पीछे पीछे घुस गए, देखे का करत है। और चोरवे भुनभुनाए, बोले क्या बताएं, बाहर से तो बड़ा टीप टाप है, भीतर दशा देखो, किसी हड़िया में आध पाव चावल पौआ भर आटा नहीं, आध पाव दाल नहीं, ये बेचारे क्या खा के सोए होंगे, उठ के बेचारे क्या नाश्ता करेंगे। चोर भुनभुनाए तो महाराज ने सुन लिया कि इनके पास कुछ नहीं, तो चुपचाप वो गठड़ी वहीं रख दिया। चोर निकल के भागे, महाराजो भागे पीछे पीछे, और निकल गए 2-1, 2-2.5 मील, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका, खतरे से बाहर होते हैं ना जल्दी से। वहां आए बोले यार ये दांव तो खाली गया, खैर कोई बात नहीं, करे कहां है रे वो गठड़ी ला तो, इसी में से कुछ इसको भी दे दे। तो बोले देखो ना कैसे घर में हम लोग घुस गए, साला 1 पाव आटा नहीं था हड़िया में, आध पाव दाल नहीं। तो महाराज बोले यार उनकी दशा देख के हमारे तो आंखों में आंसू आ गए, हमें तो रोना आ गया, और बड़ी दया लगी, हमने तो यार वो गठड़ी उसी उन्हीं के घर में रख दी। तो बोले कैसा नालायक चोर है, चोर और दया कैसी, तुम कैसा नकली चोर। बोले भाई क्या हमने बुरा कर दिया, हम चोरों को क्या, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, कभी तो हाथ लगेगा ही, उन बेचारों को तो चोरी करना भी नहीं आता, चलो कुछ दिन तो आराम से बीते। अब लगे झाऊ झाऊ करने और लड़त झगड़त सवेरा हो गया। बोले भागो साले, ये तो फलाने महात्मा चोरी नहीं है। 6 महीने बाद पकड़ गए, तब फिर संदेशा बोले गुरु महाराज छूट जाते तो हम जिंदगी भर आपे के चेला हो जाते, अब के लगता फांसी में हो जाए। छूट भी गए, बड़े अच्छे वो भी साधक निकले, तो विधिवश सुजन को संगत पड़े, फणी मानी समनी जगुण अनुसरें, देव योग से होनहार बस, बड़े सज्जन पुरुष भी कुसंग में पड़ जाते हैं, लेकिन सर्प के गले में कंठ में मणि और विष एक साथ रहता, लेकिन मणि प्रभावित नहीं होती विष से। इसीलिए सबको चाहिए कैसी भी विषम परिस्थिति हो, भला हमारा चिंतन ही कैसा कि भला हम पर प्रभाव पड़ जाए। हर साधक को जो हरि के भरोसे होता है, समर्पण के साथ नाम सुमरण करता है, एक प्रभु का सेवक है मन कर्म वचन से, हरि भक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड जादू टोना मंत्र तंत्र गृह और दशा, कुछ भी नहीं लगता उसको। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।